नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का इस सुहाना सफर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने अभी तक इसी ऊपर चर्चा करते आए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन कभी गहराई से इस बात के ऊपर विचार नहीं किया कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। कभी इसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं कि हमारे संकल्प का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे जीवन पर इतना असर डालता है कि हमारा जीवन कहीं का कहीं भी पहुंच सकता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक परिवार में माँ बाप और उनका एक बच्चा रहता था। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, उसी समय उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ अकेली रह गई और चूंकि माँ बहुत हिम्मती थी, उसने हिम्मत करके अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, कुछ दिनों बाद उसका प्रिंसिपल ने एक छोटा सा पर्ची दिया और उस बच्चे को कहा कि बेटा, इसको, इस पर्ची को सिर्फ अपनी माँ को दिखाना, किसी को नहीं दिखाना, खुद भी नहीं पढ़ना। बच्चे ने वैसा ही किया। वो पर्ची लेकर के घर गए और अपने माँ को दिखाया। माँ जब उसको पढ़ी तो पढ़ते पढ़ते बहुत जोर जोर से रोने लगी। बच्चे के मन में विचार आया कि क्या बात है, मेरी माँ क्यों रो रही है। बच्चे ने बहुत प्यार से पूछा, मम्मी क्या लिख दिया है प्राचार्य ने जो आप इतना जोर जोर से रो रही हो। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने आप को पहले संभाला और कहा, बेटा आपके लिए लिखा है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपके अंदर बहुत योग्यता है, आप बहुत आगे जा सकते हैं, आपका बेटा बहुत पढ़ने में होशियार है, हमारा स्कूल आपके बच्चे के एजुकेशन के लायक नहीं है, आप इसको किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहां बहुत उच्च क्वालिटी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। माँ ने आसपास वालों से सहयोग लिया, अपने रिश्तेदारों से सहयोग लिया और उस बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाई एडमिशन दिलाया जहां पर उच्च क्वालिटी की पढ़ाई होती हो। बच्चा आगे चल करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। बहुत खुशी हुई माँ को और उनका जीवन यापन ऐसी चलता रहा। कुछ समय बाद माँ की मृत्यु हो गई। वो बच्चा जो छोटा था वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। एक दिन अपने कमरे में बैठा बैठा विचार आया, आज घर की थोड़ी सफाई कर लेता हूं। सफाई करते करते उसे एक दिन वही पर्ची मिला जो उसकी माँ के लिए उसके प्रिंसिपल ने बचपन में दिया था। उसको खोल करके देखा, उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में, ये बच्चे का लायक हमारा स्कूल नहीं है, हमारा स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, इस स्कूल से निकाल करके कहीं और एडमिशन दिला दीजिए, आपका बच्चा बहुत कमजोर है। उस दिन वो माँ के आंखों में आंसू आया था, आज उस बच्चे के आंखों में आंसू आ गया कि उसने मन में सोचा कि अगर आज मेरी माँ ने सत्य बात बताई होती तो आज मैं वैज्ञानिक नहीं बन पाता, बल्कि मेरी माँ ने निगेटिव बात को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करके मुझे ऐसे बताया कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत होशियार हैं। हमें जानने को मिलता है कि सच में हमारे जीवन में कभी कभी दूसरे का भी सहयोग ऐसा मिल जाता है जिससे हमारा जीवन गतिमान हो जाता है, ये सफर सुहाना हो जाता है। प्यारे दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये घटना केवल काल्पनिक नहीं, केवल कहानी नहीं, बल्कि ये सत्य घटना है। हम इसी ऊपर आज चर्चा करेंगे, हमारा संकल्प का प्रभाव कैसे पड़ता है, हमारा संकल्प कहाँ कहाँ काम करता है, हमारे संकल्प में कितनी शक्ति है। आदरणीय सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता बहन जी, जैसे मैं शुरू में एक छोटा सा कहानी की असत्य घटना है कि एक बच्चे के ऊपर उसकी माँ का कितना प्रभाव पड़ा, तो हम अपने संकल्प शक्ति को, हमारी जो सोच की शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है, या यूं कहें कि पॉजिटिविटी जो संकल्प है, उसको काम कैसे कराएं, उसको विकसित दिशा में कैसे लेकर के जाएं।
उस माँ ने बहुत ही समझदारी से अपने बच्चे के मन में ये स्वीकार करा दिया कि तुम कमजोर नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान हो, बहुत होशियार हो और बहुत ही बड़ा स्कूल तुम्हारे लायक है, ये तो छोटा स्कूल है, ये एजुकेशन तुम्हारे लायक नहीं है, तो उसके मन में ये स्वीकार करा दिया और उस बच्चे ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं बहुत होशियार हूं, ये प्रिंसिपल ने लिख के दिया है। तो बहुत ही बुद्धिमता से माँ ने काम लिया और उसी बुद्धिमता के कारण वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। हम कोई भी विचार अपने मन में उत्पन्न करते हैं तो उसमें से तरंगे उत्पन्न होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म तरंगे होती हैं, लेकिन उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे ऊपर प्रकृति पर और ब्रह्मांड पर पड़ता है। अब यदि मेरी सोच सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है, शुभ है, शक्तिशाली है, कल्याणकारी है, तो ये तरंगे बहुत ही पावरफुल होती हैं। जैसे मैंने यहाँ सोच उत्पन्न की, कोई भी सोच, मान लीजिए कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी सोच मैंने यहाँ उत्पन्न की, तो उस सोच में से, उस विचार में से तरंगे पैदा हुई और वो मेरे ही चारों तरफ एक सर्कल बना लेती हैं। और यदि मेरी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ये तरंगे अग्नि की माफिक होती हैं, गोल्डन कलर का आकार लिए होती हैं, जो मेरे लिए सुरक्षा कवच बन जाती हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियां जो उनमें से तरंगे निकलती हैं, ये इतनी डर्टी होती हैं, इतनी गंदी जैसे होती हैं, जैसे एक मील से धुआं निकलता है। कैसा धुआं निकलता है कि उसे देख के हम अपना नाक बंद कर लेते कि ये दूषित धुआं, प्रदूषित धुआं कहीं मेरे अंदर ना प्रवेश कर जाए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ से धुआं फेंकने लगते हैं और वो इतना वीक ओरा बनाता है कि हम जितनी भी हमारे आसपास नेगेटिव ऊर्जा है उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। एक बात पर हम विशेष फोकस डालेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम जितने पॉजिटिव होते हैं उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा को, एनर्जी को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जितने ही हम नेगेटिव होते हैं तो जो हमारे आसपास नेगेटिव ऊर्जा है उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा के कारण जो हमारे चारों तरफ एक सर्कल नेगेटिव बन जाता है, एक डर्टी, एक बहुत वीक ओरा बन जाता है, उसमें कोई भी नेगेटिविटी बहुत इजीली प्रवेश कर लेती है और हमें बहुत बहुत और ज्यादा नेगेटिव बनाने लगती है।
बहुत गहरी बात आप सुना रहे हैं कि हमारा नेगेटिव का प्रभाव हमारे पॉजिटिव का प्रभाव कैसे पड़ता है। मैं थोड़ा सा और इसको सरल रूप से जानना चाहता हूं हमारे दर्शकों के तरफ से, कि कोई आपके पास उदाहरण हो या कुछ ऐसे दृष्टांत हो या किसी का कोई अनुभव हो।
तो ये जो तरंगे हैं मेरे चारों तरफ तो ओरा बनाती ही हैं, लेकिन हमारी तरंगे जो हमारे मन में सोच उत्पन्न हुई, उसमें जो एनर्जी पैदा हुई तरंगों के रूप में फैली, वो प्रकृति तक भी पहुंचती है प्लस पूरे ब्रह्मांड में पहुंचती है। प्रकृति उन्हें रिसीव करती है, ब्रह्मांड भी उन्हें रिसीव करता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे और पृथ्वी के बीच में, हम कितने भी जोर से कोई बॉल ऊपर फेंके तो वो उतने ही फोर्स से नीचे आएगी। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में और प्रकृति में भी हमारे साथ को लेकर के एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। वो कुछ जो कुछ भी हमसे ले रही है पुनः हमें बहुगुणा रूप में लौटा रही है। क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, तो नेगेटिविटी भी है प्लस बहुत शक्तिशाली पॉजिटिव ऊर्जा भी है। यदि यहां से हमारी सोच पॉजिटिव है, तरंगे हमारी पॉजिटिव फैली, ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने रिसीव की, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में मिल जाती है और बहुगुणा रूप में लौटकर आ जाती है और हमारी सिचुएशन हमारी मन की स्थिति के अनुसार क्रिएट हो जाती है।
भाई साहब थोड़ा सा और, गीता बहन तो बहुत गहरी बात बताई हम लोगों को, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसको और सरल करके थोड़ा बताएंगे कि कैसे निगेटिव का प्रभाव और पॉजिटिव का प्रभाव पड़ता है। और भूमंडल की बात बताया है, ब्रह्मांड में, तो ये ब्रह्मांड में मतलब कहाँ तक हमारे संकल्प जाता है और वापस कहाँ से आ जाता है, तो थोड़ा सा इसको और क्लियर करेंगे तो अच्छा रहेगा।
मैं कई बार सोचता हूँ कि एक व्यक्ति बैठा है, कुछ कुछ सोच रहा है जी, कुछ घटना दुर्घटना बुरी चीज उसके पास पास नहीं है, वो बैठा बैठा सोच रहा है, कुछ चेहरे पे उदासी आ जाती है, बच्चे दौड़े आते हैं, मम्मी क्या बात है, खुश नहीं हो आज? सोचती है अरे कुछ हो गया क्या? नहीं मैं तो खुश हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। विचार ब्रेन में प्रवेश करते हैं, उसकी एनर्जी स्वरूप बन जाता है उसका, उसके चारों ओर वातावरण भी फैलता है। देखिए बहुत सुंदर एक उदाहरण है, एक घर में एक छोटी बिल्ली पाली हुई है किसी ने, घर में खुशी का माहौल है, सब देख सकेंगे कि बिल्ली उछल कूद कर रही है, आनंद में है, और वहीं कोई ट्रेजेडी हो गई है, सब गमगीन हैं, तो बिल्ली भी एक किनारे पर चुपचाप बैठी सबको निहार रही है। मैं तो और भी निरीक्षण किया, एक घर के आगे आंगन में कुछ छोटे छोटे पौधे लगाए हुए, फूलों के पौधे, घर में खुशहाली रहती है, फूल भी खिलते हैं, जैसे मुस्कुराते हैं, सुगंधी बिखेरते हैं। और मान लो किसी घर में अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में बहुत टेंशन रहती है, तो निगेटिव एनर्जी फैलती है, तो फूल भी मुरझाते हैं,
पौधे भी सूख जाते हैं,
पौधे भी सूख
जाते हैं। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं भाई साहब कि हमारे संकल्प का प्रभाव जंतु जानवर पर, बिल्ली पर, और हमारे गमले पौधे पेड़ सब के ऊपर पड़ता है।
मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, देखिए फूलों में, गुलाब में कितनी खुशबू होती है, पर आज बहुत घरों में ऐसे गुलाब है कि थोड़ी सी खुशबू दिखाई देती है। हमें याद है बचपन में हम अगर एक सेब खा लेते थे एनर्जेटिक रहते थे, आज सेब में रस ही नहीं है, लगता है ऐसे ही बस घास जैसा खा रहे हैं, कुछ नहीं इनमें। इसका कारण ये है कि मनुष्य की निगेटिव एनर्जी ने इन सब को प्रभावित कर दिया है। मैं बहुत गहराई से सोचा करता हूँ, जब कई पंडित लोग, ज्योतिषी लोग हमारे पास भी आते हैं, हमारे यहाँ राजयोग करते हैं, ज्ञान लेते हैं, और हम तुलना किया करते हैं ज्योतिष और ईश्वरीय ज्ञान में कितना सामंजस्य है। तो ज्योतिष विद्या भी है तो सत्य कोई उसको जाने या न जाने, वो जानने वाले पर है कि उसका जानकार कितना एक्सपर्ट है। तो मैं सोचा करता हूँ, लोग कह रहे हैं इस ग्रह का ये इफेक्ट तुम पे हो रहा, इस समय तुम पे ये बुरा इफेक्ट है, इस समय सारी सृष्टि पर ही राहु की दशा है एक घंटे के लिए, लोग ऐसा सोचते हैं। मैं सोचता हूँ ये प्रकृति की चीजें हैं, जड़ है, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, जो भी एक ग्रह है, सब जड़ हैं। अब क्या जड़ वस्तुओं में इतनी ताकत आ गई है कि वो चेतन मनुष्य पर अपना प्रभाव डालने लगा है? तो देखिए बात बहुत गुह्य है और विचारणीय है। सत्य तो ये है कि चेतन मनुष्य का प्रभाव इन ग्रहों पर जाता है। तो देखिए जितने भी यहाँ मनुष्य हैं, हम पांच मनुष्यों को ले लें, एक बहुत महान व्यक्ति है, एक पंडित पुजारी है, एक आम काम करने वाला व्यक्ति है, एक चोरी करने वाला है, एक बहुत क्रिमिनल है, बड़ा वायलेंट है। अभी एक एक व्यक्ति के संकल्पों की तरंगे अब दूर दूर तक जा रही हैं, ये सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं, इससे सभी तारे भी प्रभावित हो रहे, आकाश भी प्रभावित हो रहा है, वायु पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये ग्रह भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब जिस ग्रह का जिससे कनेक्शन है उसके वाइब्रेशंस उसको जा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है ग्रह। अब जो चीज उसने ले ली वो रिटर्न करेगा, उसे वो रिफ्लेक्ट आउट होगा, तो वही तरंगे का मुख समय पर उस व्यक्ति के पास आने लगती हैं। ये है ग्रहों का इफेक्ट। तो फाइनली ग्रहों को दोष नहीं हम दे सकते, दोष है हमारे कर्म और फिर उठने वाले हमारे मन के विचार। तो इतना गहरा इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए एक व्यक्ति, एक तपस्वी जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करता है, शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं उसे चारों ओर, तो ये पेड़, उसका तना जहां उसकी जड़ है, अगर उस पे एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया हुआ, वो ये सब उसके सुंदर वाइब्रेशंस को ग्रहण करते रहते हैं। और अगर वो मान लो 10 साल वहां तपस्या करता है, तो पेड़ की हर टाली में, पेड़ के हर पत्ते में वो वाइब्रेशन समा जाते हैं, और जो भी व्यक्ति वहां जाकर बैठेगा उसको शांति की अनुभूति होगी। एक जगह मुझे एक प्रैक्टिकल घटना याद आ गई, हमारे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर कर्नाटक में कहीं बन रहा था, शहर से 20 किलोमीटर, हमें ले गए, 125 आफूसाम के पेड़ भी थे वहां, उन्हें काटना नहीं था, उन्हें बचाते हुए मकान बनाने थे, होल बनाना था, मुश्किल से 2-3 पेड़ कटने थे होल, क्योंकि बड़ा था उसके निर्माण के लिए। बहुत सारे भाई बहने उसके फाउंडेशन स्टोन लगाने के समय इकट्ठे हुए थे, हम लोग तो उनके मेहमान थे ही, तो हमने सबको ये राय दी कि आप जब यहाँ सब आए, एक एक 5-5 का ग्रुप हर पेड़ के नीचे बैठ जाए और बहुत अच्छा 1 घंटा रोज मेडिटेशन करें, तो इन पेड़ों से भी वो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगेंगे, और जो व्यक्ति इस कैंपस में आएगा, काफी बड़ा था वो, है तो उसको उस तरह की गुड फीलिंग होगी और ये मानवता के लिए बहुत ही सुंदर सेवा होगी। तो इस तरह ये वाइब्रेशंस काम करते हैं।
मैं आपसे जिज्ञासावश पूछना चाहता हूँ, आज की कॉमन एक समस्या हो गई कि हमारे जैसे आप बता रहे हैं हमारा संकल्प का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर सभी ग्रहों पर जाता है, तो कई बार आज लोग परेशान है कि गर्मी में कभी बारिश हो जाती है या बारिश में कभी गर्मी हो जाती है या ठंड में कभी गर्मी हो जाती है या गर्मी में कभी ठंड हो जाती है, तो ये जो वातावरण में जो प्रभाव पड़ रहा है या वातावरण में जो परिवर्तन आ रहा है क्या इसके भी जिम्मेदार हम स्वयं हैं?
देखिए मनुष्य ही सब चीजों का जिम्मेदार है। रेगिस्तान में ओले पड़ गए जहाँ कभी बारिश नहीं होती, अरब कंट्रीज में वहाँ बड़ी अच्छी बारिशें हो गई, तो ये क्लाइमेटिक चेंज तो हो ही रहा है। अब ये धरती भी बदलेगी, इसका एक्सिस भी चेंज होगा, सागर की लोकेशन भी चेंज होगी, तो ये मनुष्य के संकल्पों के प्रभाव से ही सब कुछ हो रहा है। मनुष्य के विचारों की तरंगों का प्रभाव ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है क्लाइमेटिक चेंज के लिए।
मुझे एक बहुत ही सुंदर सच्ची घटना याद आ रही है जो मैं बताना चाहूंगी। हमारा कैंपस है शांतिवन, यहाँ एक बिहार से माता आई सेवा के लिए, हमारे यहाँ आते रहते हैं सेवाओं के लिए देश भर से लोग। वो माता दिन में कम से कम 10 बार 10 अलग अलग भाइयों को बहनों को पकड़कर एक बात बोलती थी कि भैया वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ भी हूँ, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं बहुत गरीब हूँ। वो बार बार यही बोलती थी, मैं बहुत गरीब हूँ। जैसे उसने गरीबी को अपने अंतर मन में स्थान दे दिया, स्वीकार कर लिया कि मैं बहुत गरीब हूँ, और यही वो सोचती थी, यही बोलती थी। तो देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि दो अपोजिट एक साथ कट्ठे नहीं रह सकते, तो धन आने के सारे मार्ग उसकी सोचने बंद किए हुए थे। तो एक दिन एक भाई ने हमारे जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छी संकल्प शक्ति पर उनकी कमांड है, उन्होंने उससे बात की और कहा कि माता आप ये जो रोज रोज कईयों को पकड़ के बोलती हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया, बस मुझे गरीब बना दिया ना, ये अच्छा नहीं किया। तो आप ये जो बोलती हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, आप अपने इस विचार को बदलो। भगवान ने आपको क्या क्या दिया वो याद करो। देखिए आपको इतना सुंदर शरीर मिला है जिसकी कीमत आकी नहीं जा सकती। उसको यही बार बार बताया कि तुम गरीब नहीं हो, देखो तुम भगवान की सेवा करती हो, भगवान के अंग संग का अनुभव करती हो, तुम्हारे पास शांति सुख संतोष के खजाने हैं जो किसी के पास नहीं है। उसको ये बोला कि चलो मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे कहीं से खुशी खरीद के ला दो, शांति खरीद के ला दो, लेकिन वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास है, सबसे कीमती दौलत तुम्हारे पास है, तो तुम गरीब कहाँ हो? अपनी सोच बदलो। तुम सुबह उठ करके रोज भगवान को धन्यवाद करो कि हे भगवान तूने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे जीवन में संतोष दिया, खुशी दी, लायक बच्चे दिए, तेरा कोटि कोटि बार धन्यवाद। और तुम शुक्रिया करो कि जिस पर भगवान की आशीर्वाद हो, भगवान की कृपा हो जिसके ऊपर, वो गरीब हो ही नहीं सकता। तुम जैसे सुनाओ पूरे ब्रह्मांड को, सुना दो पूरी प्रकृति को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैं इस दुनिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बेमोल खजाने हैं, मेरे पास खुशी है, मेरे पास शांति है, इससे बड़े खजाने दुनिया में कोई हो ही नहीं सकते। तो माता को तैयार किया कि तुम स्वीकार करो तुम धनवान हो, ठीक है। माता ने ये स्वीकार कर लिया और वो रोज सुबह उठने लगी, खुले दिल से भगवान का धन्यवाद करने लगी। अब उसकी टोटली सोच बदल गई, जहां वो रोज बोलती थी मैं गरीब मैं गरीब मैं गरीब, स्वीकार कर चुकी थी, अब उसने उस गरीबी को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दिया। अब वो रोज सोचती है मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। और आपको बताऊं एक ऐसा वंडरफुल रिजल्ट सामने आया जो हमारे लिए भी बहुत सोचने की बात थी। कम से कम 20-25 दिन के बाद ही उसके बेटे का फोन आया बिहार से। माता विडो थी, बेटा था उसका, और उसको एक गुड न्यूज सुनाया कि माता जो हमारी लैंड एक कटरीली पहाड़ी थी, जो नेपाल में आउटर एरिया में थी ऐसे ही पड़ी थी काफी सालों से, कोई से पूछता भी नहीं था,
लेना भी नहीं चाहता था,
किसी काम की भी नहीं थी। तो उसने क्या गुड न्यूज सुनाई कि नेपाल के गवर्नमेंट ने वो जमीन 60 से 70 लाख रुपए में खरीद ली है और हमें घर बैठे इतने पैसे मिल रहे हैं उस कटरीली जमीन के। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे उस माता ने कॉन्फिडेंस से अपने आप को ये विश्वास दिलाया कि मेरे जैसा धनवान तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत धनवान हूं, तो गरीबी वहां से निकल गई, धन का आगमन हुआ, धन के रास्ते खुलने लगे। उसने कई बार सोच सोच कर उस धन का आह्वान किया और उसे यही ये गुड न्यूज मिला।
भाई साहब, जैसे गीता बहन ने बताया कि हमारी जो स्थूलता है ये तो सूक्ष्म चीज है कि हमारे संकल्प का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन जैसे बताया कि एक माता ये सोच ले कि मैं गरीब नहीं हूं, पहले वो सोचती थी मैं गरीब हूं। अब आम आदमी जो गरीब है वो तो यही सोचेगा ना भाई साहब कि मैं गरीब हूं, लेकिन अगर उसके संकल्प ये चल जाए कि मैं गरीब नहीं हूं धनवान हूं, तो क्या सच में स्थूल धन आने भी शुरू हो जाते हैं?
देखिए ऐसी बात है, अभी जो व्यक्ति गरीब है, मान लो मजदूर के घर जन्म लिया बच्चों ने, अभी वो अपने माँ बाप को मजदूरी करते देखते हैं, उनके साथ ही जाते हैं पढ़ने लिखने में, अगर भेजा भी जाता है तो इतना शौक नहीं रहता है उनको, एक नेचुरल सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प समा जाता है भाई हम तो मजदूर हैं, तो गरीब हैं, अब हम थोड़ा ही शादियों में बहुत पैसे खर्च करेंगे, हम थोड़ा ही कोई कार खरीदेंगे, हम तो गरीब हैं,
स्वीकार कर लेते हैं,
स्वीकार कर। बस बात ये है कि जिस मनुष्य जो स्वीकार कर लिया वो प्रैक्टिकल होने लगा। तो ऐसे जितने भी गरीब लोग हैं, पहले तो मैं उन सबको कहूंगा कि कर्मठ बन जाए। मान लो उन्हें गरीबी में मजदूरी भी करनी है ना, तो मजदूरी भी ऐसी जिम्मेदारी से करें कि जो उसका मालिक है वो खुश हो जाए, कुछ ही दिनों में बड़ा काम मिल जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत जिम्मेदार है। अभी एक मजदूर व्यक्तियों में क्या हो रहा है कि अपने मन को वो ठंडा कर दिया है, धीरे धीरे काम करेंगे और हम तो हैं ही डल, हमारा क्या महत्व है। विचार बदल दें, संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार बदलने से जीवन बदल जाएगा और धन लक्ष्मी तो सचमुच हिम्मतवान लोगों के पीछे पीछे घूमती है, जो कर्मठ हैं उनके पीछे पीछे घूमती है, उनकी गरीबी अवश्य नष्ट हो सकती है। और जैसा हम सिखाते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं गरीब लोगों की, उन लोगों की भी हैं जो कर्ज में दब गए थे और जो सुसाइड करने जा रहे थे, उनको भी गरीबी समाप्त हुई और बिल्कुल सब कुछ सुधर गया, न उन्होंने सुसाइड करने की फिर सोची और न उनको कुछ भी अभाव रहा। लेकिन देखिए, ये चीज किसी को जल्दी प्राप्त हो जाती है, किसी को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। अगर मनुष्य ये रिजेक्शन की फीलिंग को निकाल दे, उसका जो विवेक है अंतर विवेक, वो रिजेक्ट न करे कि तुम धनवान हो। जैसे गीता बहन ने कहा, एक एक अंग की कितनी वैल्यू है, खुशी और शांति की कितनी कीमत है, जो बाजार में नहीं मिलती, जो कहीं नहीं मिलती। वो व्यक्ति ऐसी खुशी और ईश्वरीय नशे में रहने लगे, एक खुमारी चढ़ जाए, नहीं हमारे पास सब कुछ है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, तुम्हारा बारंबार शुक्रिया, हमारे पास सब कुछ है, पर्याप्त धन भी है, चलो ये भी ना कहे मैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हूं, पर मेरे पास बहुत धन है, मुझे कहीं कमी नहीं पड़ती, जहां आवश्यकता होती है धन प्राप्त हो जाता है, मैं सचमुच बहुत सुखी हूं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार धन यानी लक्ष्मी उसकी ओर आकर्षित होने लगेगी, मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन मनुष्य को विश्वास भी चाहिए, पहली चीज कॉन्फिडेंस, और उस तरह की कर्मठता भी, पुरुषार्थ भी उस तरह का। ये नहीं कि वो कुछ ना करे कि मैंने तो प्रकृति को कह दिया है और प्रकृति तो मुझे धन देगी, और खाली बैठ इंतजार करता रहे कि कब खाने के लिए रोटी दे प्रकृति, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस प्लस प्रयास, मैंने कर्मठता में कहूंगा, और फिर ये सुंदर संकल्प, वन थॉट ओनली, रिजेक्ट न करे माइंड, तो देखो ये चीजें चमत्कार करेंगे।
वैसे भी हम किसी बहुत बड़े उद्योगपतियों की जीवन कहानी कई बार पढ़ते हैं भाई साहब, तो उनका बचपन का दिन हम जब पढ़ते हैं तो वो साधारण कोई मजदूरी करके, कोई पेट्रोल पंप में काम करके, और आज वो पेट्रोल पंप के मालिक बन गए। बड़े बड़े ऐसे उद्योगपतियों के भी हम सुनते हैं, तो वो गरीबी से उठ करके आगे बढ़े। तो गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन सिर्फ संकल्प की बात है कि उसमें अपने आप को कैसे मोल्ड करें और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप दोनों हमारे दर्शकों के लिए बहुत सुंदर सुंदर विचार लेकर के आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए, उसके लिए पुनः आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने चर्चा में जाना कि जीवन में कभी कोई बात आती है तो उस बात को बहुत गहराई से ना ले। कई बार हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, हम दूसरों से तुलना करते हैं कि काश मेरे पास भी ये चीज होता तो मेरा जीवन का बहुत विकास हो सकता। लेकिन हमारे अगर संकल्प अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर खुशी का संचार हो रहा है तो हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अपने जीवन का आनंद लीजिए। हमारा एक एक अंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शरीर का भी ध्यान रखते हुए अपने जीवन को बहुत गतिमान बना करके रखें, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बना करके रखें। आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे तो आपके समाज खुश रहेंगे। आपकी खुश रहने से कितनी बड़ी शक्ति संसार में फैल रही है इसकी जानकारी हमें मिली। आगे भी आपको बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।